अगला टॉपिक देखते हैं, गम ना करें, डोंट बी सैड। गम ना करें, आप इसका तजुर्बा कर चुके हैं। बेटा फेल हो गया, आपको गम हुआ, तो क्या गम से वो कामयाब हो जाएगा? ये चंद जुमले लिखिए, खुद से पूछिए, तो आप देखिएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि रह जाती चीजों पे गम कर रहे हैं, जबकि गम करने से फायदा कोई नहीं होगा। वालिद की वफात हो गई, आप शोक मना रहे हैं, तो क्या शोक से वो वापिस आ जाएंगे? चलिए तिजारत में नुकसान हो गया, आपने रंज किया, तो क्या रंज से नुकसान फायदे में बदल जाएगा? नहीं। इसका जवाब एक ही, नहीं, तो फिर गम ना करें, क्योंकि आप एक मुसीबत पर गमगीन होंगे, मसाइब का ढेर लग जाएगा। फकरो फाके पर बेचैनी हुई और मुसीबत बढ़ गई, दुश्मनों की बातें सोच सोच कर फिक्रमंद हुए, इस तरह इनकी ही मदद कर बैठे। दुश्मन तो चाहता कि आप दुखी रहे, तो आप तो अपने दुश्मनों के प्लान खुद ही फुलफिल कर रहे हैं। आपको किसी आफत का अंदेशा लाहक हुआ, वो नहीं आई। कितनी चीजें हम सोचते हैं होगी होगी, अल्लाह ने आज तक कोरोना से बचाया, अल्लाह आगे भी बचा देगा। बी होपफुल, क्यों हर वक्त खोलते रहते हैं हम? गम नहीं करना चाहिए कि गम के साथ वसी घर, खूबसूरत बीवी, मालो दौलत, जाहो मनसब और लायक बच्चे भी कुछ काम ना देंगे। गम ना कीजिए, हुस्नो मलाल को करीब ना आने दीजिए। क्या आपके पास दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो होंठ हैं, दो हाथ, दो पाँव, जुबान और अमनो अमान और आफियत है, सेहत हासिल है? और अल्लाह ताला क्या पूछते हैं सूरत रहमान में, फबियाय अला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओगे? तो फिर आप गम क्यों करें, जबकि दीन और अकीदे की नेमत हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, सही लकीन है, कही अल्हम्दुलिल्लाह। घर में रहते हैं, सड़क पे तो नहीं पड़े हुए, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़ा पहनते हैं, साथ देने और आराम पहुंचाने के लिए बीवी और शोहर मौजूद हैं, फिर गम का क्या जवाब? तो क्या सीखा, गम न कीजिए, ये करने की चीज नहीं है, इसको पीछे डाल दें। अमूमन देखिए गम की क्या सूरतें होती हैं, खानदान में किसी का इंतकाल होना, ये मेरे लिए सबसे इंतहाई फॉर्म होती है, कारोबार में नुकसान हो गया, बच्चा इम्तिहान में नाकाम हो गया, इस दवाजी जिंदगी में मसाइल हैं, शोहर को बीवी, बीवी को शोहर की बात ही नहीं समझ आती। क्या इन सब पे गम या सोग मनाकर हम इनको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते, तो क्या करें, नेमतों को गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स, फबियाय अला रब्बिकुमा तुकज्जिबान। फिर अपनी नेमतों को कैटेगराइज कीजिए, मसलन सेहत, अल्लाह की दीवी जिस्मानी नेमतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप एक मुकम्मल जिस्म के मालिक हैं तो आप अमीर तरीन है, आंख तो नहीं फूटी हुई, कान तो नहीं आधा कटा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। घर को देखिए, माशाल्लाह आपके घर है, अल्हम्दुलिल्लाह। खानदान है, माँ भी है, बाप है, भाई बहन है, बच्चे हैं, बीवी है, बहुत बड़ी नेमते हैं। पिछले एक पूरे साल में कोई भी करीबी फौत नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे लिए बड़ी अहम होती है वो है रोजगार, जॉब, बिजनेस और रिस्क। ये नहीं कि मनी है कि नहीं, वो तो जायदादें पड़ी हुई हैं, वो तो प्लॉट्स के प्लॉट हैं, मसला ये कि रोजगार चला गया, हाई मियां की जॉब चली गई। और माजरत के साथ कि ये गम ज्यादा औरतें मनाती हैं, उनको लगता है कि रिस्क जॉब से आता है। तो अगर आपके पास दो वक्त का खाना है, पूछिए है, शर्मिंदा तो नहीं होगी इस जुमले को सुन के, दो वक्त का नहीं, दो महीने का खाना घर में मौजूद है, शुक्र कीजिए, आप बहुत सारों से बेहतर हैं, हलाल रोजगार है आपके पास, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। हदीस लीजिए इस टिप पर, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत मिलती है, उस शख्स को देखो जो तुमसे कम है, मालो दौलत में और हुस्नो जमाल में और बाल बच्चों में, और इसको मत देखो जो तुमसे ज्यादा है। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह तआला की नेमत को हकीर ना समझोगे अपने ऊपर। सही मुस्लिम 7430 नंबर की हदीस है। तो क्या पता चला कि गम ना करो। अच्छा, अभी तक तुम गम ना करो, गम ना करो कह रहे हैं ना, जिसको गम मनाने की आदत होती है ना, बल्कि माजरत के साथ बाद लोग तो गम को पालते हैं, बेहतर है बिल्ली पाल लीजिए, गम ना पाले। तो अब आगे कुछ टॉपिक सिर्फ गम के साथ हैं, जिसमें पहला टॉपिक है गम की नेमत। मैं इसलिए बोल पड़ी कि आप मेरे से नाराज ही ना हो जाएं कि ये गम भी कभी नेमत होता है, तो आइए देखते हैं कि गम नेमत कैसे होता है। रंज-ओ-अलम हमेशा ही बुरा नहीं होता, ना हमेशा ही ना पसंदीदा, कभी कभी बंदे के लिए रंज करना बेहतर होता है। कभी दुख होता है तो वालेहाना दुआ और सच्ची तस्बीह पढ़ी जाती है। सच बताइए, दिल में दुख हो तो उस वक्त जो दुआएं मुंह से निकलती हैं वो कभी खुशी में निकली? उस वक्त जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाहु अकबर, वो तड़प कभी निकली? गम के बगैर तो गम नेमत ना हुआ। तालिब इल्म जमाने तालिब इल्मी में तकलीफ उठाता, इसकी मेहनत इसे बड़ा आलिम बना देती है, क्योंकि शुरू में इसने मेहनत की इसलिए आखिर में वो चमक गया। शायर भी पहले अच्छा खासा दुख झेलता, अपने दिल और जिगर का खून करता, इसके बाद ही वो मुअस्सर अदब तख्लीक करता जो खूबसूरत और दिलकश भी होता है और जाज़िब नज़र भी। जो तालिब इल्म आराम और सुकून की जिंदगी गुजारता है, इसे बुहरान और मुश्किलात से गुजरना नहीं पड़ता। ऐसा तालिब इल्म हमेशा सुस्त और काहिल रहेगा, वो तरक्की नहीं कर सकता। जो शायर तकलीफ नहीं उठाता, अपने दिल और जिगर का खून नहीं करता, दर्द का इसे एहसास नहीं होता, इसकी शायरी पुरअसर और जिंदा और जावेद नहीं होती, क्योंकि वो शायर के मुंह से निकलती है दिल से नहीं, इसकी जुबान से अदा होती है, इसके दिल और जमीर महसूस नहीं करते। इनसे भी बुलंद और अरफा मिसाल इन मोमिनीन की जिंदगी है जो सदर इस्लाम में हुए, यानी जब अल्लाह के नबी का दौर था, बिल्कुल इब्तदाई दौर इस्लाम का, जबकि बेसत का आगाज हुआ और मिल्लत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदा हुई, क्योंकि इनका ईमान बुलंद था, इनके दिल नेक थे, वो कौल के सच्चे और इल्म में गहरे थे, क्योंकि उन्होंने मुसीबतें झीली, शदायत उठाए, भूख प्यास तकलीफें बर्दाश्त की, घरों से निकाले गए, अपने प्यारों को छोड़ना पड़ा, मरगूबात से हाथ धोया। इसी तरह वो अल्लाह के मुंतखब बंदे और चुनी हुई जमात बने, चोजन पीपल। वो पाकिजगी की मिसाल, इज्जत की निशानी और कुर्बानी की अलामत थे। ये इस वजह से कि इन्हें जो भी प्यास अजियत तकलीफ पहुंची, जो भी कदम उन्होंने उठाए, जिससे कुफार नाराज हुए, दुश्मनों को जो भी जिक उन्होंने पहुंचाए, इसके बदले एक अमल साले लिख दिया गया। और अल्लाह मोहसिनीन के अजर को जाया नहीं करता कि जो लोग अल्लाह के रस्तों में निकलते हैं तो उनको जाहिर जिस सब कुछ तकलीफें पहुंच रही होती हैं, लेकिन अल्लाह उसके बदले में खैर दे रहा होता है। तो जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की कदर नहीं होगी। इनके अलावा और भी मिसालें हैं जिन्होंने रंजो अलम उठाए और इसके बाद बेहतरीन तख्लीकात पेश की। मुतबन्ना एक शायर थे, इनको शदीद बुखार हुआ तो उन्होंने अपना शाहकार कसीदा कहा। अरबी शायर के अशआर सुनिए कि जिसमें वो अपनी बुखार की कैफियत को भी कितने खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं। वज़ाइरती कान बिहा हयातुन या हयान फलैसत तज़ूरु इल्ला फिल अज़लाम। इसी तरह नाबिगा नाम का एक शायर था, इसको अन्नुमान बिन मुंजर ने कत्ल की धमकी दी, जिसके बाद इसने अपना बेहतरीन कसीदा कहा। फ़ाइन नक शमसुन वल मलूकु कवाकिब इज़ा तलअत लम युब्द मिन्हुन्ना कौकब। यानी गोया के कह लीजिए कि अगर मैं बुखार ना होता, मुझ पे बीमार ना होता, तो मुझे आप देखने कैसे आते? यानी जो मुझे देखने आते हैं वही मेरी जिंदगी है, उन्हीं के साथ ताल्लुक है, और जब भी तकलीफ होती है, गम होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई खैर तो होती है। और दूसरा जो शेर है उसका मतलब ये है कि आप तो सूरज हैं और जो बड़े बड़े बादशाह वो तो छोटे छोटे सितारे हैं, और जब सूरज निकल आता है ना तो सितारे छुप जाते हैं। तो ये देखिए गम को नेमत समझने वाले लोग। इनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने दर्द उठाए और जिंदगी पर असरअंदाज हुए। आप और मैं क्या करें, आप तकलीफ पर घबराएं नहीं, ना डरें, ये आपके लिए कुवत बन जाएंगी और मताए हयात का काम देंगी। अगर आप दिल जले की हालत में रहें, जज्बा दिल और तड़पती रूह के साथ हों, तो ये इससे बेहतर है कि आप ठंडे ठंडे कम हिम्मत बनकर बुझे बुझे दिल के साथ जिए। अल्लाह ने कहा ऐसे लोगों के बारे में सूरह तौबा ही में 46 आयत है, अल्लाह ने इनके उठने को नापसंद किया इसलिए इनकी हिम्मत तोड़ दी और इनसे कह दिया कि बैठने वालों के साथ बैठो। यानी जिनको अल्लाह के रास्ते में उठना अच्छा नहीं लगता, अल्लाह कहता फिर बैठो तुम, बल्कि बैठ रहने वालियों के साथ बैठो, तुम हाथों में चूड़ियां पहन लो। ये मर्द अच्छे नहीं होते जो अल्लाह के रास्ते में उठते नहीं है। इसी तरह यहाँ एक शेर है शायर का, कहता है जिसने जुदाई और फुरकत का कर बर्दाश्त किया, शदायत यानी मुश्किलात से गुजरा, इसने आखिरी सांसें लेते हुए जो कसीदा कहा वो अरबी अदब में जिंदा और जावेद हो गया, और इसने इसे अमर कर दिया यानी हमेशा रहने वाला, वो मालिक बिन अर्रबीब है। और इसका कसीदा फितरी जोश से पुर, तकल्लुफ और तसन्नो से आरी, शाहकार और मशहूर है। इसने यूं कहा, अलम तरानी बाथा असलालत बिलहुदा बस बख्तु फी जैश इब्ने अफवान गाजिया फलिल्लाहि रद्दी यौमत्र कुतायन बनी बियालल रकमतैनी व मालियन। तर्जुमा भी समझ लीजिए, क्या तुम नहीं देखते कि मैंने जलालत को हिदायत के बदले बेच दिया है और मैं इब्ने अफान के लश्कर में शामिल होकर लड़ रहा हूँ। बस अल्लाह ही का एहसान है कि मैं इसकी इताअत में मुकाम रकमतैन, जगह का नाम है, मैं अपने बेटों और माल को छोड़ रहा हूँ। इस कसीदे के आखिर तक यही लय है, यही दर्द अंगेज नाला है, यही दिल से निकली चीखें हैं। इनकी तासीर का राज यही दर्द और अलम की तस्वीर है। जो वाइज और खतीब दिल जला होता है और दर्द की तस्वीर खींचता है, इसके बोल और खिताब राज असर करते हैं। यानी जो दर्द देने वाला और जो शेर कहने वाला और जो खुतबा देने वाला अपने अंदर दर्द रखता है ना, उसकी बात में दर्द होता है और उसकी बात में तासीर होती है। और इसे वजह तौर पर कहा जाए तो आप कह सकते हैं, अस दिल खैस बर दिल रेस्त। हमारे यहाँ उर्दू में इसको क्या कहते हैं, दिल से जो निकलती है वो दिल पे उतरती है। एक जुमला लिखिएगा, शायद आपको फायदा हो। जब भी किसी से बात करें दिल से बोलिए। दिल से बोलेंगे ना तो लोग दिल से सुनेंगे, जुबान से बोलेंगे ना तो लोग कानों से सुनेंगे। और जो बंदा सर से पांव तक जुबान नहीं बनता, उसकी बात में तासीर नहीं आती। तो जब भी कहीं बोलें, बच्चों को समझा रहे हैं, ऑफिशियली आप एक टीचर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो भी हैं, एक असूल रख लें कि ऊपरी ऊपरी बातें ना किया करें। कॉपी में से देख के पढ़ रहे हैं, बच्चे को डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नहीं, दिल तारी करें। जिस मंजर से गुजरते नहीं आपको उसकी फीलिंग भी तो नहीं आती ना, तो खुद पर तारी करें, फीलिंग्स के साथ बोलें, अंदर डोल डाल डाल कर निकालें। दिल से बोलना है ना तो आराम से बोलेंगे, लेकिन आपके निकले हुए अल्फाज दूसरों के जज्बात को भारेंगे और ऐसी आपकी आवाज में तासीर होगी कि लोग कहेंगे बस आपकी बात सुन के अब हम फारिग नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना है। तो बाहर की दुनिया के मनाजिर को अंदर महसूस करें, अपने साथ साथ को बढ़ाइए। हम अपना इल्म बढ़ाते रहते हैं, लिख लिख के नोट सफ़े काले कर देते हैं, दूसरों की बोली बातें वो बोल चुके हैं, आप उन्हीं को बोलकर क्या कारनामा करने वाले हैं। अब देखिए, खाना होता है ना जो हजम होता है फिर जिस्म को ताकत देता है ना, और एक खाना है आपने खाया और वोमिट कर दिया, ये दूसरे की बात सुनकर उसको जाकर डिलीवर कर देना, ये वोमिट होता है। हाँ, पहले उसको अंदर लाइए, जज्बात बनाइए, अमल में ढालिए, पहले खुद को सुनाइए। और जितना समंदरों जैसा बड़ा आपका जर्फ बनता जाएगा ना, आपकी बात में तासीर होगी। फील इट, अपने एहसास को बढ़ाइए, अपने मुशाहदात को अल्फाज देना सीखें। किताबें पढ़ पढ़ कर आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, लेकिन आप उस्ताद नहीं बन सकते। लोग कहते हैं बात याद नहीं रहती, हाय ये बातें लिखी नहीं जाती। क्यों लिखनी है, आपने कोई टेस्ट देना है इनका? याद तो वो रखे जिसने पेपर देना है, कोई इम्तिहान में थोड़ी बैठे हुए। आप में एहसास की दुनिया में रहें, लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व करें, प्यार करें, छुएं, छोटे छोटे बच्चों से प्यार करें, आपके अंदर गुदास आने लगेगा। ठंडक में जाकर खड़े होकर देखिए, आप क्यों डरे बैठे हैं, हाय बाहर बड़ी सर्दी है, खिड़की खोलकर आप अपने मुंह पे हवा लगाइए, आपके अंदर ठंडक होगी। गुलाब की पंखड़ी को पकड़िए, हल्के हल्के उसको सहलाइए, आपके अंदर नजाकत आएगी। जो कायनात की किताब नहीं पढ़ सकता, वो तो अल्लाह की कुरान की किताब पढ़ कर भी अपने अंदर जज्बात नहीं ला सकता। और याद रखिए, सूरज की किरणों को अगर निकलता नहीं देखा आपने, तो कैसे लोगों को उम्मीद का पैगाम देंगे? और अगर आपने सूरज को डूबते और तुलू होते नहीं देखा, तो आपकी बातें सिर्फ किताबी बातें हैं। कुछ लोग बात करते हैं आधा हाल सो रहा होता, क्योंकि वो जुबान से बोल रहे होते हैं, और जो दिल से बात कर रहे होते हैं लोग रो रहे होते हैं उन बातों पे। तो लिहाजा आप इन सारी बातों से ये सीख लीजिए, दिल से बोलना सीखें, दिल से बात करें, क्योंकि दिल से निकलेगी तो दिल तक जाएगी। अपने एक्सपीरियंसेस को देखिए, अपने एक्सप्रेशंस को देखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, हर चीज का कोई मकसद होता है। हम खामखा लोगों को डांटते रहते हैं, बात हमारी में कोई असर नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि अंदाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो अंदर के समंदर में तला तुम पैदा कीजिए, अंदर की मौजें आपकी अगर मद्दो जजर में आ गई ना तो बाहर की दुनिया में आप इंशाल्लाह कोई ना कोई हलचल तो मचा देंगे। बाहर के मेलों से ज्यादा अंदर मेले लगाइए, फिर देखिए आपकी बात में असर कैसे आता है। जिसका दिल जलता है ना उसके अंदर से तो फिर बातें निकलती हैं दुखी दुखी। वो दर्द की तस्वीर खींचता है, इसके बोल और खिताब असरअंदाज होते हैं। इसे बजाय तौर पर कहा जाता है कि दिल से निकलेगी तो दिल तक जाएगी। और अल्लाह ताला भी तो कहते हैं ना कि अल्लाह ने जान लिया इनके दिल की तड़प को और इन पर सकीनत नाजिल की और करीब की फतह हता की। सूरत फत की आते हैं। एक शायर ने कहा जिसका मफहूम यह है कि आशिक के इश्क और इसके दर पर तुम इस वक्त तक मलामत नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे दिल की गहराइयों में भी वही दर्द न उतर आए। मैंने बहुत से शायरों के दीवान देखे लेकिन चूंकि इन्हें खुद दर्द व अलम के तजुर्बों से गुजरना नहीं पड़ा इसीलिए वो महज मजमून आफरीनी की मिसाल है। यानी हर शायर की बात कहाँ दिल पे उतरती है तो कहाँ हर वाइस की बात दिल पे उतर जाए। उनकी बातों में न जिंदगी है न रूह है। इसी तरह बहुत सी किताबें वाजो नसीहत की देखी लेकिन सुनने वाले पर कोई असर ही नहीं पड़ता, मुखातिब इनसे कोई असर नहीं लेता। वजह यह है कि वो अल्फाज का मजमुआ है, जुबान से ने अदा कर दिया जाता है, न दर्द का एहसास न जज्बे की गर्मी। ठीक, कुरान कहता है वो अपने मुंह से वो चीज निकालते हैं जो इनके दिल में नहीं होती। ऊपरी ऊपरी बातें करते हैं, यकूलूना बिअफवाहिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम वली कैफियत। तो लिहाजा आप अपने कलाम या शेर को मुअसर बनाना चाहते हैं, आप कहेंगे ना हम शायर हैं ना हम अदीब हैं ना हम उस्ताद हैं, तो घर के बच्चों को नहीं कुछ सिखाना। बाज माए राग अलापती रह जाती हैं, बच्चे कान नहीं रख के देते। बाज बाप चीख चिकार में उतर कहते हैं ये तो अपने बाप की नहीं सुनेंगे ये किसी की क्या सुनेंगे। तो अपने अंदर ढूंढिए, आपको अल्लाह ने हर मुकाम पे बोलने का कोई ना कोई प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। जाकर खुद से पूछिए कि मेरी बात में तासीर है, अपनी बात में असर पैदा करे। ये देखना खुशबू लगाए और खुशबू ही ना आए, क्या फायदा उस परफ्यूम का जिसकी खुशबू ना आए। खाने में कोई अच्छा एसेंस डालें और उसकी खुशबू ना आए, तो बातों से खुशबू आए ये दुआ किया करें। लेकिन इसके लिए आप खुद पहले उस आग में जलेंगे। अगर आप अपने कलाम और शेर को मुअसर बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को इसकी आग में जलाइए, इसका असर लीजिए, इसके साथ चलिए। आप देखेंगे कि लोगों पर आप असरअंदाज होंगे। अल्लाह ताला कहते हैं फिर जब हम इस पर बारिशें बरसाते हैं तो ये उभरती है और हर किस्म की रौनकदार नबातात उगाती है। ये जमीन की खूबी है, तो आपकी मेरी भी यही खूबी होती है। इसलिए अंदर दर्द खींचिए, जिसने फील नहीं किया वो देगा कहाँ से। तो जब दर्द आता है ना अंदर तो फिर अल्लाह ताला तासीर भी देते हैं। तो क्या सीखा, गम की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। इसी के बाद तो अंदर सोज और गुदास आता है। कैसे, गम बर्दाश्त करने वाले बुलंद हौसला लोग होते हैं। अंबिया कराम थे जिन्होंने गम बर्दाश्त किए और फिर खैर का एक ऐसा प्यारा मजमुआ बन गए कि इंसानियत को खैर देते रहे। फिर साहब कराम गम बर्दाश्त करने वाले थे। सलफ सालेहीन यानी हमारे इंसेस्टर्स फोर फादर्स बुजुर्गान दीन जो भी कह लीजिए वो भी ऐसे ही थे। और फिर मुत्तकीन अफराद और कमजोर अफराद, हर एक को किसी न किसी हद तक गम आता है, उसको नेमत बना लीजिए। क्योंकि गम हमेशा बुरा नहीं होता, गम में रब से सच्चा ताल्लुक पैदा होता है और मेहनत और सच्ची लगन से इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना लेता है। और अंजुअलम और तकलीफ के मुस्बत असरात क्या हैं? पहली बात है कि अल्लाह ताला मुहसिनीन के अजर को जाया नहीं करते। तकलीफ और मसाइब को अपनी कुव्वत बना ले। एक जुमला लिखिएगा, बड़े शोर से बोलने लगी हूँ। गम छोटे इंसान को खा जाता है और बड़े इंसान को बना जाता है। किसी से ये जुमला सुना था, 100% सच्चा लगा। बंदे की असल खुल के आ जाती है दुखों में। वो तो खा गया, उसको तो कहता है आए मैं तो बिस्तर पे लग गया, और दूसरा बंदा कहता है इसी के बाद तो मुझे जीना आया कि मैं इस बीमारी का इलाज अपनी विल पावर से और अपनी मुदाफियत और इम्यूनिटी से कैसे कर सकता हूँ। तो आप हैं क्या, छोटे के बड़े, ये बहुत मैटर करता है गम पे। और इसी तरह रंजो अलम नेमत क्यों है, क्योंकि इसमें इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। ये फितरी सी बात है, दुख और गम में फितरत पे पड़े हुए पर्दे हटने लगते हैं। सूरह ज़ुमर 49, फ़ाइज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दअना सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु नेमतम मिन्ना क़ाल इन्नमा उतीतुहु अला इल्म बल हिया फितना वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून। इंसान को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम इसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता फरमा दें तो कहने लगता है कि इसे तो मैं महज अपने इल्म की वजह से दिया गया हूँ, بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اللہ اکبر، تو کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی غم آ ہی چکا ہے تو اس کو نعمت بنا لیجئے۔ اور اگلا ٹاپک اس سے بھی خوبصورت ہے، وہ ہے معرفت کی نعمت۔ جی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر تو اللہ کا فضل ہی بہت بڑا۔ معرفت کے عرف سے پہچاننا، علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہونا، کائنات کی حقیقت کا پتہ چلنا۔ تو جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ جاہل ہے یا جہل پہ۔ تو جہل ضمیر کی موت ہے، وہ زندگی کو ذبح کرتا ہے، یہ عمر کا زیاں بھی ہے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، گائے کے واقعے میں آتا ہے۔ اور فائنی قریب جو دعاؤں کی بوکس کی پہلی دعا ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ علم نور بصیرت ہے، روح کی زندگی ہے، طبیعت کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک روشنی دے دی جس میں وہ چلتا ہے لوگوں کے بیچ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو، ان سے نکل نہ پاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہے۔ یعنی سچی خوشی اور چہرے پہ مسکراہٹ علم کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ علم نامعلوم کے حصول اور گم شدہ کی تلاش اور چھپے ہوئے کے کھلنے کا نام ہے، اکتشاف، کشف سے۔ آدمی کے دل کو جدید کی معرفت اور نئے کی اطلاع کی چاٹ لگی ہوئی ہے، یعنی آپ کے دل کرتے نئی نئی چیزیں ملیں، نیا پن، نئی خبریں۔ اس کے مقابلے میں جہل اکتاہٹ اور حزن کا نام ہے، یعنی جس کے علم نہیں نمارو کہ اکتایا رہے گا، بور۔ بچوں کو دیکھیے، بور، آج کی نسل بور، گھر بیٹھے بستر توڑے بور، مرد گھروں میں ہے، لاک ڈاؤن ہے، بول، بورنگ کا کس کے بس وقت ہے؟ کتاب کھولیے، پڑھیے۔ آج تو کتاب پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ کتاب سن بھی سکتے ہیں، آج کی تو کتاب میرا لے کھل کر آپ کے دل میں بھی گھس جائے، ٹائم ہی نہیں آپ کے علم کا۔ یقین کریں لاک ڈاؤن سے بہترین جیل اور قید زندگی میں نہ کسی کی آئی ہوگی، کیا قبر کی تنہائی میں ہوگا، ہم تو قبر میں بھی بیٹھے بور ہوتے رہیں گے، حالانکہ وہاں کتنا موقع تھا ہمارے پاس، لیکن عمل کا وقت ختم ہو چکا۔ تو یاد رکھیے، جو آج لاک ڈاؤن میں علم نہیں رہ رہا اور صرف دنیا کی خبروں میں کھو گیا، آخرت کی خبروں کی اس کو فکر نہیں، تو اس کی زندگی سے غم نہیں جائے گا۔ ایک دن خبریں سننا چھوڑ دیں، یہ بھی ٹپ لکھ لیجئے۔ غم فری ہونا چاہتے ہیں، ٹینشن فری ہوتے ہیں، ایک دن خبریں سننا چھوڑ دیں، کم از کم 24 گھنٹے آرام سے گزریں گے آپ کے۔ خام خواہ دنیا کو، انسانیت کو پریشان کرنا، تبھی تو لوگ ان کے چینلز کو جا کر کھولیں گے اور سنیں گے۔ سنسنی خیز خبریں پھیلانا کچھ لوگوں کا یہ کام ہے۔ تو یاد رکھیے، جو ہلکتاہٹ اور حزن کا نام ہے، وہ ایسی زندگی جس میں کچھ بھی نیا نہیں، نہ لطف نہ مٹھاس، یعنی کچھ کو ذرا بھی شوق نہیں ہوتا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ بولنے کا، نہ پہننے کا۔ تو جہالت ہے، یہ کیا زندگی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں کہ بس اب دنیا سے جائیں اور آگے جائیں؟ نہیں، ہر روز ایک ہی طرح کے بنے پھرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو علم حاصل کیجیے، معرفت کی تلاش کیجیے، فائدے حاصل کیجیے، تاکہ آپ کے تمام تفکرات اور انجو مہن، مہن کہتے ہیں امتحان کو، ختم ہو جائیں۔ اور کیا کہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت 114 ہے، اور اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی، پہلی اینٹ، اور سورۃ الق کی پہلی آیت پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اور حدیث کہ جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے اسے دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے علم لینا اور دینا۔ یقین کیجئے مجھے ابھی پیار ہی آ گیا، اللہ پہ ہی آ گیا۔ آپ دیکھیے کہ ہفتے کے ساتھ دینا ہے، منڈے سے تھرسڈے 2 کلاسیں، آج صبح آیت بایت ہوئی، ایک ایک آیت کے اندر ہی کھوئے رہتے ہیں اور وقت چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ شام کو ہم ڈونٹ بی سیڈ لا تحسن لے رہے ہیں، جمعے کا دن آتا ہے تو چلیے جمعے کی کچھ ایکسٹرا تیاری ہے۔ اس دن آپ کا یہ شام کا سیشن نہیں ہوتا، لیکن صبح آیت بایت ہوتی ہے۔ آگے 2 دن رہ گئے ہفتے میں، ہفتہ اور اتوار آپ کے میرے پرسنالٹی گرومنگ کے سیشن۔ یہ علم کی جو ورائٹی مجھے اپنے ارد گرد دکھتی ہے نا، نہ مجھے بور ہونے دیتی ہے، نہ مجھے تھکنے دیتی ہے، نہ میں پریشان ہوں۔ میں کہتی ہوں اس سے پیاری زندگی کیا ہوگی۔ میں ایسے بہت ساروں کو جانتی ہوں، آپ جیسے ہر سیشن میں ساتھ ہوتے ہیں، ان کا بھی ہفتے کا سلیبس بن گیا الحمدللہ۔ اس پہ رہیے، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ، یہ کر وہ کر، تو جب دیکھیے علم میں کھو جاتے ہیں تو غم کا تو وقت ہی نہیں رہتا۔ اس کے برعکس جو شخص جاہل ہے، معرفت میں صفر ہے، وہ نہیں پہچانے گا رب کو، اسے اپنے مال و جاہ پر فخر کا کوئی حق نہیں۔ کیونکہ اس کی زندگی مکمل نہیں، اس کی حیات کامل نہیں۔ وہ شخص جو جانتا ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے اوپر حق نازل ہوا ہے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اسی طرح زمخشری ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ علوم کی تنقیح کے لیے میرا جاگنا میرے لیے کسی دوشیزہ کے وصل اور ہم آغوشی سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ مشکل اردو ہے، نہیں سمجھے؟ کہتے کہ رات کو علم کے لیے جاگوں، تنقیح ہوتی ہے، اس میں بحث، جرح، تعدیل، یعنی اس کے اندر گہرائی سے اتروں۔ یعنی کہہ لیجئے کہ ایک مرد اپنی بیوی سے جو محبت پیار طلب کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے میرا خوشی سے جھومنا ساقی کے پیالے سے زیادہ لذیذ اور میٹھا۔ پھر کہتے ہیں، میرے قلم کے کاغذ پر چلنے کی جو آواز نکلتی ہے وہ عاشقوں کے نغموں سے بہتر ہے، جو اپنی محبوباؤں کے لیے گاتے ہیں۔ اپنے کاغذات سے گرد و غبار کو جھاڑنے کی آواز اس آواز سے زیادہ اچھی ہے جو دوشیزہ اپنا دف بجا کر نکالتی ہے۔ سن اے وہ شخص جو محض آوازوں سے میرا رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، میں رات بھر جاگوں، تم رات بھر سو، اس کے باوجود تم میرا مقام پا لینا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، شاید آپ نے تو ان کا نام بھی نہیں اتنا سنا۔ امام زمخشری آپ کہہ لیجئے کہ تفسیر کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے۔ یہ علم کی دنیا والوں کی زندگی ہے، ان کی راتیں بھی منور، ان کی صبح بھی خوبصورت، ان کی سحریاں بھی۔ 2-2.5 گھنٹے کی نیند ہی کافی ہے، کیونکہ لذت تو مل گئی پڑھنے اور پڑھانے میں۔ آپ نے سو کر لذت لینی تھی، وہ مل گئی۔ آپ کو آرام چاہیے تھا نیند میں، ان کا آرام ہے کام میں۔ اور الحمدللہ یہ زندگی اللہ ہر ایک کو دے۔ کبھی انگلیوں پہ گن کر دیکھ لیں کہ دن میں کتنے گھنٹے سوئے ہیں، اور پھر بھی فریش، پھر بھی حشاش اور بشاش، اور آدھا آدھا دن بستروں پہ سونے والے کسل مندیوں کا شکار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔ تو علم سے محبت کیجیے، یہ فیورٹ ٹاپک ہے۔ اس پہ اگر میں نے خود سے بات شروع کر دی تو ہو سکتا ہے پھر اسی پہ رکنا پڑے۔ آپ اس دنیا کا لذت لے کر تو دیکھیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تم میرے والا مقام پانا چاہتے ہو، جو چیز کسی نے محنت سے حاصل کی تم وہ صرف ادھر ادھر کی چیزوں سے جمع کرنا چاہتے ہو۔